सुबह के 10:30 हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हाजिर है। एक सीनियर पाकिस्तानी मुजाकरात सलाहकार ने कहा है कि तालिबान की जानिब से जंगबंदी में तौसी की राह में कुछ रुकावटें हायल हैं। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि इन रुकावटों को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम उन्होंने कहा कि जब तक बातचीत जारी है फायरबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की बगावत के मुकदमे में वकला ने अदालत में उनकी पेशी पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है। साबिक फौजी सदर के वकील चौधरी फैसल हसन ने बताया है कि उनके मौकिल की सेहत और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात को देखना अभी बाकी है। वकील इस्तगासा तारिक हसन ने भी इस पर गैर यकीनपन का इजहार किया है कि मुशर्रफ पीर को अदालत में पेश होंगे। तालिबान अस्करियत पसंदों ने अफगानिस्तान के इंतखाबी सदर दफातर पर हमला किया है, जो आइंदा हफ्ते होने वाले सदारती इंतखाब से पहले हमलों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कार्रवाई है। अफगान अहदेदार कहते हैं कि अस्करियत पसंदों ने काबुल में हफ्ते के रोज़ इंतखाबी कमीशन पर धमाका खेज मवाद से फायरिंग की, जहाँ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। काबुल पुलिस के एक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका के दरी आशना रेडियो को बताया कि 5 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया, क्योंकि अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी अफवाज के दरमियान झड़प हुई। पुलिस के 2 एहलकार जख्मी भी हो गए। भारत में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से कहा है कि वह इंतखाबी जायजों की नशरोशात पर पाबंदी के लिए कानून बनाए। यह बात इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के नाम एक खत में कही है, जबकि इससे पहले अटर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन की इस तजवीज की हिमायत कर चुके हैं। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर हुकूमत से कहा है कि वो इंतखाबी जायजों की नशरोशात पर पाबंदी लगाने के लिए कानून वजा करे। जिस तरह उसने इंतखाबी रायशुमारी पर पाबंदी लगाई है, उसी तरह इस बारे में भी कदम उठाए। कमीशन ने वजारत कानून से कहा कि वो आईन के जरिए अता करदा अख्तियारात का इस्तेमाल करके ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। उसके ख्याल में आईन की दफा 324 के तहत अगर वो ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो वो कानूनी तौर पर पायदार नहीं होगी। वजारत कानून ने चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो मजकूरा दफा में दिए गए अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी जायजों की अखबारों में इशात और टेलीविजन चैनलों से उन्हें नशर किए जाने पर पाबंदी लगा सकता है। कमीशन ने इसके जवाब में कहा कि अगर हुकूमत इस बारे में कानून बनाती है तो ज्यादा बेहतर रास्ता होगा। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के सामने ये तजवीज रखी है कि पार्लियामानी और असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर आखिरी मरहले में वोटिंग मुकम्मल होने तक इंतखाबी जायजों की नशरोशात पर पाबंदी लगनी चाहिए। मौजूदा कानून के तहत कमीशन को वोटिंग से 48 घंटे कबल इंतखाबी जायजों पर पाबंदी लगाने की इजाजत है। इस साल के शुरू में अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबी प्रोग्रामों के ऐलान से लेकर आखिरी मरहले की वोटिंग के दरमियान इंतखाबी जायजों की नशरोशात पर पाबंदी लगाने की कमीशन की सिफारिश की हिमायत की थी। ताहम ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत इस बारे में कोई कदम उठाने के लिए तैयार है। उसने ये मामला कानून कमीशन के हवाले कर दिया है, जो इंतखाबी इस्लाहात के वसीतर मामले का जायजा ले रहा है। वजारत कानून का कहना है कि चूंकि सरदस्त कानून साजी मुमकिन नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी जायजों पर पाबंदी लगानी चाहिए। इंतखाबी तारीखों के ऐलान के बाद मीडिया की जानिब से इंतखाबी जायजों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो इंतखाबी मुहिम के आगे बढ़ने के साथ साथ तेज होता जाता है। बहुत से हलकों से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि अखबारात और न्यूज़ चैनल सियासी पार्टियों से पैसे लेकर उनके हक में इंतखाबी जायजे शाये और नशर करते हैं। गुज़श्ता दिनों आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में कहा था कि मीडिया का एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी के हाथों बिका हुआ है, जो पैसे लेकर उनकी छवि बेहतर करने में मसरूफ है। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी हुकूमत कायम हुई तो ऐसे सहाफियों को जेल भेज दिया जाएगा। इस बयान पर जबरदस्त तनाज़ा पैदा हुआ था। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत में 2014 के लोकसभा इंतखाबात और उनके नतायज के पाकिस्तान पर असरात, इस बारे में हमारे साथी असद हसन ने प्रोग्राम इन द न्यूज़ में भारत के एक सियासी तजियाकार नीलोफर सोहरवर्दी से गुफ्तगु की है। इसी गुफ्तगु से एक इक्तबास सुनिए।
जैसा आपने कहा था, ओपिनियन पोल्स के मुताबिक तो बीजेपी शायद लीडिंग पार्टी इमर्ज कर जाए, लेकिन कई सालों से कोई एक पार्टी यहाँ हुकूमत नहीं बना पाई है। हमारे यहाँ कोएलिशन गवर्नमेंट रही है कि कई पार्टीज को जोड़कर तब हुकूमत बनी है, मरकजी हुकूमत। तो चाहे बीजेपी आए लीडिंग में पार्टी रहे या कोई और पार्टी रहे लीडिंग, तो बगैर कोएलिशन के अगली हुकूमत नहीं बन सकती, एक बात ये है। दूसरी बात, आपने आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा, उनका चूंकि दिल्ली में वो एकदम नई नई पार्टी और लोग काफी मायूस है कि दिल्ली की हुकूमत नहीं चला पाए, कुछ ही दिनों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि लोगों ने उनको मौका दिया था
जी।
तो ज्यादा से ज्यादा अगर हरियाणा में थोड़ा बहुत एक आध सीट ला सकते हैं, उनका कोई खास रोल नहीं है, हो सकता है ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी के खिलाफ सेक्युलर वोट जो जा सकते हैं वो कच सकते हैं, और कांग्रेस को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अभी ये भी कोई यकीन तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो रियासती पार्टियां हैं कई रियासतों में, मतलब यूपी में, डाउन साउथ भी, और इनका एन वक्त पे रुझान बदल सकता है। मतलब
इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं कि भारत के इंतखाबात के नतीजे के पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं। इसी बारे में प्रोग्राम इन द न्यूज़ में हमारे साथी असद हसन ने पाकिस्तान के तजियाकार जफर इकबाल चीमा और दिफा से मुतालिक तजियाकार बरगेरिया सईद नज़ीर मोहम्मद से गुफ्तगू की है। जफर इकबाल चीमा ने कहा,
मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के साथ तलकात में हिंदुस्तान के साथ कोई बुनियादी फर्क आएगा। नरेंद्र मोदी भी अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हो सकता है वक्ती तौर पर 2-6 महीने के लिए डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हालात को एक नट पे लाने के लिए कुछ वक्त लगे, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक सतह के ऊपर सेटल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान बजाते खुद एक साउथ एशिया का बड़ा मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान भी एक आटमी कुवत है। पाकिस्तान अब कई सालों से समझ है कि हिंदुस्तान हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। मसला ये है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं और पीसफुली हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर हिंदुस्तान के साथ हमारा कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो हम यही कह सकते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगर हिंदुस्तान नहीं मानता तो फिर भी इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है अल्टीमेटली आपको जो भी हुकूमत आए हमें इसकी तरफ एक कदम उठाना होगा।
ब्रिगेडियर साहब, आप भारत के इंतखाबात आप उन पे कमेंट कीजिएगा, आपके ख्याल में कितने इम्पोर्टेंट हैं?
इम्पोर्टेंट तो है, जाहिर है कि पड़ोसी मुल्क है और उनके साथ हमारे बहुत सारे बॉर्डर के अलावा बहुत सारे जो वाटर का इशू है, कश्मीर का इशू है, ट्रेड का इशू है, बाकी जो स्ट्रेटेजिक दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, फिर एक किस्म की एनिमोसिटी पिछले 67 साल से चली आ रही है, तो इंडिया के इंतखाबात जाहिर है पाकिस्तान को इफेक्ट करते हैं, और फिर खुसूसन ऐसे लोग अगर बरसर इक्तदार आते हैं जो कि मेरे ख्याल में ज़ात पात और इसके अलावा जो रिलीजन उसको ज़्यादा, जिस तरह मोदी साहब है जिस तरीके से अपने मुहिम उसको चला रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी वार मॉन्गरिंग या एक किस्म की ये कहे कि पाकिस्तान बेशिंग या उसको एक 7 AK-48 और AK-49 के तौर पर उसको पेश किया जा रहा हो, तो मेरे ख्याल में कि फिर और पहले से इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हो, फिर जिस तरीके से उसकी पहले वो परफॉर्मेंस स्पेशली पाकिस्तान के बारे में जो उसकी राय रही है तो उससे तशवीश तो जरूर पैदा होता है, लेकिन इंतखाबी नारा अलग बात होती है और जब ऑफिस में आते हैं और फिर जिम्मेदारी पड़ जाती है उसको निभाना अलग बात होती है, लेकिन फिर भी माइंडसेट की जो बात होती है तो वो माइंडसेट फिलहाल तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक किस्म के इन्हें मीडिया भी और जो लीडर्स हैं वो जितना पाकिस्तान बेशिंग करे शायद उसको पॉपुलरिटी समझते हैं, प्लेइंग टू द गैलरी।
अभी आप सुन रहे थे कि भारत में होने वाले इंतखाबात के पाकिस्तान के ऊपर असरात क्या होंगे। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। अफगानिस्तान में 5 अप्रैल को होने वाले सदारती इंतखाबात में 8 उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिमात खूब जोरों शोर से चला रहे हैं। मौजूदा अफगान सदर हामिद करजई आइनी तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने के अहल नहीं। ये इंतखाबात जमहूरी तरीके से नए रहनुमा को इक्तदार मुंतकिल करने की पहली मिसाल होंगे। शैरन बैन की रिपोर्ट अंजुम हैरल गिल से।
अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात में 3 उम्मीदवार सफ़े अव्वल में शामिल हैं। तमाम उम्मीदवारों ने कमज़ोर मईशत और बम धमाकों के सिलसिले के बावजूद इस्तेहकाम के कयाम और मुलाजमतों की फराहमी का वादा किया है। 13 साल पहले तालिबान हुकूमत के गिरने के बाद वर्ल्ड बैंक के साबिक अफसर अशरफ गनी करप्शन के खिलाफ जंग, मईशत को मजबूत बनाने और सियासी निज़ाम को आगे बढ़ाने के वादे कर रहे हैं। دوسرے امیدوار زلمے رسول غنی کی طرح ہی ایک ٹیکنوکریٹ ہیں اور موجودہ صدر حامد کرزئی کے وزیر خارجہ تھے۔